ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवताम की जय। विल बी रीडिंग टुडे श्रीमद्भागवताम कैंटो 7 चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 9। श्री इंद्र उवाच आस्तेषा जठरे वीर्यम् अविषह्यम् सुरद्विषः आश्यताम् यावत् प्रसवम् मोक्षार्थ पदवीम् गतः। श्री इन्द्र उवाच आस्तेषा जठरे वीर्यम् अविषह्यं सुरद्विषः आश्यतां यावत् प्रसवम् मोक्षार्थ पदवीं गतः। ओके प्लीज रीड। श्री इन्द्र उवाच आस्तेषा जठरे वीर्यम् अविषह्यं सुरद्विषः आश्यतां यावत् प्रसवम् मोक्षार्थ पदवीं गतः। श्री इन्द्र उवाच आस्तेषा जठरे वीर्यम् अविषह्यं सुरद्विषः आश्यताम यावत् प्रसवम् मोक्षार्थ पदवीं गतः। माताजी आस्तेषा जठरे वीर्यम् अविषह्यं सुरद्विषः आश्यताम यावत् प्रसवम् मोक्षार्थ पदवीं गतः। एनीवन एल्स? श्री इंद्र उवाच राजा इंद्र ने कहा आस्ते है अश्याह उसके जठरे उदर में वीर्यम वीर्य अविषह्यम असहनशील सुरद्विषह देवताओं के शत्रु का आश्यताम इसे रहने दे हमारी कैद में यावत जब तक प्रसवम बच्चे का जन्म मोक्षे मैं छोड़ दूंगा अर्थ पदवीम मेरे लक्ष्य का मार्ग गतः प्राप्त हुआ। राजा इंद्र ने कहा इस असुर पत्नी के गर्भ में उस महाअसुर हिरण्यकश्यप का वीर्य है अतएव इसे तब तक हमारे संरक्षण में रहने दें जब तक बच्चा उत्पन्न नहीं हो जाता तब हम इसे छोड़ देंगे। तात्पर्य स्वर्ग के राजा इंद्र ने प्रहलाद महाराज की माता को इसलिए बंदी बनाना चाहा क्योंकि उसने सोचा कि उसके गर्भ में दूसरा असुर दूसरा हिरण्यकश्यप बैठा है अतएव सर्वोत्तम उपाय यही होगा कि जब यह बच्चा उत्पन्न हो तो उसे मार डाला जाए और तब स्त्री को मुक्त कर दिया जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री राधा गोविंद महाराज ने कल से ये चैप्टर शुरू किया है, प्रहलाद के गर्भ में, प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा। तो उन बच्चों ने, जब बच्चों को जब प्रहलाद महाराज उनके सहपाठी थे, प्रहलाद महाराज से बतलाने लगे भक्ति के बारे में, तो बच्चों ने पूछा कि आप तो अपने पिता के घर में संरक्षण में और संडर अमर आपको पढ़ाने वाले हैं जो कि राक्षस कुल के हैं, उन्होंने तो कभी इस तरह से बतलाया नहीं है हमें, तो आपने ये कहां से सीखा। तो फिर उनके प्रश्न पर तो ये इससे पहले जो श्लोक था वो नारद मुनि बोल रहे हैं कि यद्यपि प्रहलाद महाराज असुरों के परिवार में जन्मे थे किंतु वे समस्त भक्तों में सबसे महान थे। इस प्रकार अपने असुर सहपाठियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का स्मरण किया और अपने मित्रों से इस प्रकार कहा। तब दूसरा श्लोक में कोई परपट नहीं होने से हम लोगों ने ये नौवां श्लोक लिया है, तो थोड़ा वो श्लोकों को जो पहले हो चुका है उसको आपको बतलाऊंगा। श्री प्रहलाद उवाच पितरी प्रस्थिते अस्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रुर विबुधा दानवान प्रति। प्रहलाद महाराज ने कहा जब हमारे पिता हिरण्यकश्यपु कठिन तपस्या करने के लिए मंदराचल चले गए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र इत्यादि देवताओं ने युद्ध में सारे असुरों का दमन करने का भारी प्रयास किया। मतलब इंद्र यह सोचता था कि ये मेरा शत्रु है, इसका नाश करना जरूरी है। मतलब ये डिवोटी लोग जो भक्त हैं वो ये नहीं सोचते कि शत्रु है, ये मित्र है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो इस तरह का मतलब उसमें प्योर डिवोशनल सर्विस इंद्र में नहीं है, इसलिए वो किसी को शत्रु बतला रहा है, किसी को मित्र बतला रहा है। नेक्स्ट वर्स में दिया है पीपी लिख रही रिव दृष्ट्या लोकोपतापन पापेन पाप्यो भक्षिति वदंतो वासवादय। ओह, जिस प्रकार सांप को छोटी छोटी चींटियां खा जाती हैं, उसी प्रकार कष्टदायक हिरण्यकशिपु जो सभी प्रकार के लोगों पर कहर ढहाता था अपने ही पाप कर्म के कारण पराजित किया जा चुका है, ऐसा कहकर इंद्रादि देवताओं ने असुरों से लड़ने की योजना बनाई। तो एक बड़े सांप को छोटी छोटी चींटियां भी खा सकती है यदि वो मिलित होकर के आए या उन्हें समाप्त कर सकती है, क्योंकि ये संघ की जो शक्ति है उसमें संघो शक्ति कलो युगो, संघ में की शक्ति ही कलयुग में है। यदि हम एक साथ मिलकर के कोई प्रयत्न करेंगे, किसी कार्य को करेंगे, तो बड़े से बड़ा कार्य करने में भी सक्षम हो सकते हैं। प्रभुपाद का जैसे अकेले थे पर उनके डिसाइपलों के साथ में मिलकर के कि सब हम सबका कार्य है, उन्होंने इतना बड़ा महान कार्य कर दिया। तो इस तरह से ये देवता लोग वास्तव में हिरण्यकश्यपु में बहुत शक्ति थी, उसके जो साथ में जो थे साथ में कार्य करने वाले वो भी बहुत ही शक्तिशाली थे। तो भी जब इंद्र ने सबको योजना बनाई, सबको प्रोत्साहित किया, तो वो उन्होंने लड़ करके, देवताओं ने लड़ करके समस्त जितने भी हिरण्यकश्यपु के सेवक थे, सेनापति वगैरह थे, सबको परास्त कर दिया। तो ये इंद्र की योजना इस तरह से थी कि के पेट में भी जो कयाधु को उन्होंने पकड़ लिया और कयाधु के पेट में भी हिरण्यकश्यपु का जो लड़का होगा वो भी दूसरा एक हिरण्यकश्यपु ही होगा। एक के बाद एक सारे मारे जाने पर जब असुरों के महान नायकों ने लड़ाई में देवताओं का अभूतपूर्व पराक्रम देखा तो वे तितर बितर होकर के सभी दिशाओं में भागने लगे। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे अपने घरों, पत्नियों, बच्चों, पशुओं तथा घर के सारे समाज साज समाज को छोड़कर जल्दी जल्दी भाग लिए। उन्होंने इन सब की परवाह नहीं की और बस भाग गए। तो जो सबको प्यारे होते हैं, धन, पत्नी, पुत्र, पशु, बच्चे, तो इन सब की किसी ने परवाह नहीं की, सब तितर बितर होकर के भाग गए। तो ऐसा क्यों? मतलब संसार में देखा जाए तो सभी को ये प्यारे होते हैं और अपना प्राण देकर भी इनकी रक्षा करना चाहते हैं, वो धन की हो या बच्चों की हो, पत्नी की हो, घर की हो। तो ऐसा ये क्यों भाग गए, ये प्रश्न उठता है। कोई बतलाएगा कि ये असुर जितने भी थे इधर उधर तितर बितर करके भाग गए, क्यों भागे, उन्होंने इनकी परवाह क्यों नहीं की, कोई उसके बारे में बतलाना चाहेगा? कोई भी? ऐसा है, अपना प्राण सबको प्यारा है, मतलब वास्तव में देखा जाए तो आत्मा ही सबकी प्यारी है। एक छोटी सी कहानी है, एक माँ अपने बच्चे को, ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड को गोद में लेकर के जा रही थी नौका में बैठ करके। ये वास्तविक कथा है। वो हरिद्वार में गंगा जी को पार कर रही थी जाने के लिए, तो वो एक तरफ बैठी थी और बच्चे ने अपना पैर पानी में डाल दिया। पानी में डालने से और कहीं से एक मगर आया, उसने बच्चे का पैर पकड़ लिया और बच्चे का पैर इतनी जोर से पकड़ा कि नाव एक तरफ होने लगी। तो सब लोगों ने कहा कि इसे छोड़ना पड़ेगा बच्चे को, या तो उसने पहले तो कोशिश की कि न छोड़े, बच्चे को छोड़े नहीं। तब उन्होंने कहा कि तुम खुद ही कूद जाओ, बच्चे को तुम छोड़ना नहीं चाहती तो बच्चे के सहित कूद जाओ, बच्चे से तुम्हें बहुत प्रेम है। तो उसने क्या किया, क्या क्या होगा, बच्चे को छोड़ दिया, उसने अपनी जान बचाई। उसने बच्चे भले ही उसे बहुत प्यार करती थी, ग्रैंड पेरेंट्स में बच्चे के प्रति ज्यादा प्रेम होता है, ग्रैंड फादर में और ग्रैंड चाइल्ड के लिए होता है, ये स्वाभाविक है। तो उसने बच्चे को छोड़ दिया। अब आप पूछेंगे क्यों छोड़ा, उसे इतना प्यार था तो उसके साथ ही कूद जाती? नहीं, अपना प्राण, अपने आत्मा, ये सभी को पसंद है। आत्मा का कल्याण सब चाहते हैं, आत्मा का आनंद सब चाहते हैं, पर वास्तविक आनंद क्या है उससे हम अनभिज्ञ हैं, उससे हम जानते नहीं कि वास्तविक आनंद क्या है। वास्तविक हम सब वास्तव में कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, संसार में भले हम गलत काम भी कर रहे हैं पर आनंद चाहते हैं, आनंदोमय अभ्यासात्। सो आनंद की जगह, मतलब आनंद वास्तव में कृष्ण से, आनंद का सोर्स कौन है, रसो वैस, आनंद का जो सोर्स है वो भगवान स्वयं है। रस जो है, रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, उस रस से अपना संबंध जोड़ करके हम आनंदित हो सकते हैं। बिजली है, सब कुछ है, वायर है, पर पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, वो अपना कार्य नहीं करेगी, लाइट नहीं चलेगी, पंखे नहीं चलेंगे, कोई मशीनरी नहीं चलेगी। इसी तरह से हम कितना भी संसारी कार्य कर लें, अच्छी तरह से संपन्न भी कर लें, पर हम आनंदित नहीं हो सकते जब तक कि हम भगवान से अपना कनेक्शन न कर लें, क्योंकि कृष्ण ही आनंद के सोर्स है। आत्मा का जो आनंद है वो हमें भगवान से ही मिलेगा, और हम सभी आत्मा है, भले शरीर से ढके हैं और इस संसार में घुमाए जा रहे हैं, पर तो भी ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। तो माया के द्वारा हमें भगवान जो हमारे हृदय में है वो वास्तव में माया के द्वारा हम सबको घुमा रहे हैं, जैसे कि हम मशीन में बैठने पर मशीन हमें घुमाती है, तो इस तरह से हम भी माया के द्वारा प्रभावित हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आत्मा को सब प्रेम करते हैं, हम सब भगवान की ओर उन्मुख हैं, हम सब भगवान को ढूंढ रहे हैं पर गलत जगह ढूंढ रहे हैं। मान लो धन कहीं पिताजी गाड़ गए और नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी चाहे जहां खोदने लगेंगे, हमें धन नहीं मिलेगा। जब तक हमें उसका पता न हो और उस तरफ धन न खोदेंगे तो हमें एक निराशा ही मिलेगी, जबरदस्ती श्रम एव ही केवल, हमें श्रम ही मिलेगा। तो उन्होंने, देवताओं ने किसी की भी परवाह नहीं की, देवता नहीं जो डीमन थे, असुर थे, सब इधर उधर तितर बितर हो गए और हिरण्यकश्यप के महल को उन्होंने सब देवता ने लूट लिया और सारी वस्तुएं उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दी। तब स्वर्ग के राजा इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया। ये भी कार्य इंद्र का कि सबको नष्ट भ्रष्ट करने की आवश्यकता क्या थी, सब चीजों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और माता को बंदी बना लिया। इसके बाद में श्लोक है, जब इस प्रकार से गिद्ध द्वारा पकड़ी गई कुररी पक्षी की भांति भय से चिल्लाती हुई ले जाई जा रही थी, मतलब ये कौन ले जाया जा रही थी, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को ले जा रहे थे, तो किसी तो देवर्षि नारद जी उस समय किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं थे, घटना स्थल पर प्रकट हुए और उन्होंने अवस्था में उन्हें देखा, क्योंकि नारद मुनि भगवान के मन है, भगवान को जानते हैं कि भक्त है और उसके द्वारा कृष्ण भगवान की कुछ लीला करने की इच्छा है, नरसिंह भगवान के रूप में वो आने वाले हैं। तो लीला स्थल पर जहां इंद्र ले जा रहा था अपने विमान पर बैठा करके कयाधु को, उसी समय नारद मुनि आ गए और उन्होंने उसे इस तरह से, नारद मुनि ने कहा जो श्लोक यहाँ है, यह स्त्री पाप रहित है। पाप रहित तो पाप और इंद्र ने पाप किया था जो स्त्री को पकड़ लिया, या इंद्र का और कुछ था, तो इस बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि इंद्र ने क्या किया, पाप किया या कुछ और था, या उसका कार्य अच्छा था या बुरा था। और ऐसे भी कैसे कह सकता है इंद्र कि इसके पेट में मतलब दूसरा हिरण्यकश्यपु ही है, दूसरा राक्षस ही है, मतलब बिना जाने बुझे बिना समझे। वास्तव में देखा जाए कि जो लड़का होता है वो मतलब मदर की तरफ के बच्चों जैसा होता, मतलब मदर की तरफ का होता है, उसके गुण जो आते हैं, ये शास्त्र का वचन है कि जो लड़का यदि है तो वो मदर के जो पेरेंट्स वगैरह हैं, मतलब मातुल मतलब मामा नाना, इसके उसमें गुण आते हैं। जो लड़की होती है उसमें पिता की तरफ के गुण आते हैं, पर ऐसा कोई ये दृढ़ साइंस नहीं है, अलग भी हो सकता है। जैसे हिरण्यकश्यपु और कयाधु भी कोई ऐसी बड़ी भक्त नहीं थी, वो निर्दोष थी ये तो माना, पर तो भी वो भगवान की भक्त नहीं थी, उसे हम भक्तों की गिनती में नहीं लेते। तो बिना जाने बूझे वो इस तरह का वो अपराध कर बैठा, जैसे कि कंस ने भी भगवान के छह बड़े भाइयों को उसने समाप्त कर दिया था कि ये भी मुझे मारने वाले होंगे, इनके द्वारा मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। वो भगवान की लीला है हम, पर इस तरह से जनरली देखा जाता है कि लड़का अपने नाना मामा की तरफ का मेंटेलिटी का होता है। तो इंद्र के ये दोनों कार्य जो थे, एक निरपराध स्त्री को पकड़ करके ले जाना बांधना, और हो सकता है वो उसे ही मार डालने को तैयार हो, जैसे कि कंस मार डालने के लिए तैयार था, पर उसके बजाय उसने कहा कि मैं नारद मुनि के सामने कुछ बोल न पाया, तो यही कहा कि मैं इसे अपने कैद में रखूंगा, जब उसका बालक होगा तो मैं उस बालक को मार डालूंगा, न रहेगा बांस न रहे बजेगी बांसुरी। वो राक्षस ही होगा क्योंकि राक्षस का कुल में पैदा हुआ है, राक्षस का लड़का है। तो ये हिरण्यकश्यपु ने इतना मतलब मचा दिया, इतना शोर मचाया, इस तरह से सबको भगा दिया, इवन काल भी उससे डरते थे, इंद्र वगैरह सब अपनी अपनी जगह से बाहर निकल चुके थे, स्वर्ग में नहीं था, उसने ब्रह्मलोक तक का राज्य कर लिया था, ब्रह्मलोक को छोड़ करके, क्योंकि वो उनके वो ब्रह्मा जी का ही सेवक था या ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहा था। तो इस तरह से हम थोड़ा तो इंद्र का कार्य जो था वो एक तरह का पाप तो था ही था, इसमें लिखा है कि उन्होंने ये गर्भ में जो है ये तुम इसी तरह का पाप कर रहे हो, इसे ये दूसरे की पत्नी है, तुम इसे तुरंत छोड़ दीजिए। तो ये मतलब ये स्त्री पाप रहित है और तुम नया पाप मत करो। तो पाप और पाप किसे कहते हैं, एक अपराध और पाप दोनों में क्या अंतर है, पाप क्या चीज है, पाप हमें आत्मा को छूता है या सिर्फ शारीरिक है, शरीर से संबंधित है। ठीक आपने कहा, बिल्कुल। जो पाप है कि अनात्म वस्तु, अनात्म वस्तु किसे कहेंगे, देह को, अनात्म जो आत्मा से जिसका संबंध नहीं है वो देह है, तो देह को जो स्पर्श करता है वो पाप है, और आत्मा जो है वो आत्मा को स्पर्श करता है, आत्मा को टच करता है, मतलब भगवान की प्रगति में जो बाधाजनक है वह अपराध है। और जो शारीरिक यानी शरीर से संबंधित है, मतलब चोरी करना, व्यभिचार करना, इवन ब्रह्म हत्या करना, गुरु पत्नी के साथ समागम हो, ये सभी एक तरह के पाप है, क्योंकि इसका हमारे आत्मा से कोई संबंध नहीं है। लूटना, किसी की भी हत्या कर देना, ये सभी पाप है। और अपराध जो है वो हमारे डिवोशन में बाधा डालता है, भक्ति में हमें रोकता है, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम थोड़ा ये जैसे तो चार तरह के अपराध होते थे। अपराध राज है ना, राधा रानी या भक्ति से जो हमें अपगत कराता है, दूर करता है, उसे हम अपराध कहते हैं। अपगत करना है ना, दूर करना, हमें उससे अलग कर देता है, वो अपराध है। तो ये अपराध के बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो अपराध जो है भजन, भगवान की भजन में बाधक होती है। और एक तरह का अपराध जैसे भगवत अपराध, किसे कहेंगे भगवत अपराध? एक तरह का अपराध है भगवत अपराध, भगवान का अपराध। भगवान का अपराध क्या होता है? भगवान ने जैसे शिक्षाएं दी है भगवत गीता में, उसका पालन न करना, मतलब उनके आज्ञा का निरादर करना, तो भगवान के प्रति अवज्ञा या उनके विग्रह को प्राकृत मानना कि ये जो है ये पत्थर की मूर्ति बनी है, मतलब ये कोई भगवान थोड़े हैं। यदि हम भगवान को देख करके, विग्रह को देख करके माने कि ये भगवान नहीं है, ये भी एक तरह का भगवत अपराध है। मतलब ये पत्थर है, पेंटिंग है, या किसी ने कुछ बना दिया, इसमें भगवान है कौन कहता है? पत्थर में भी कोई भगवान होते हैं क्या? तो एक तरह का वो भी, या भगवान जो नरलीला करते हैं तो भगवान को एक मनुष्य मान लेना, भगवान को मनुष्य मान लेना, ये भी एक तरह का अपराध है। भगवान मनुष्य नहीं है। मनुष्य जैसे दिखना, इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमसे, मतलब वो सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य में कुछ लिमिटेशन रहती है, हाड़ मांस का देह रहता है, मरते हैं, जन्मते हैं, संसार में जाते हैं। तो भगवान को भी इस तरह से मान लेना कि भगवान भी हमारे तरफ से जन्म ले रहे हैं, या भगवान को भी जरा ने बाण मारा और भगवान भी देह छोड़ गए, भगवान मर गए, जरा ने मार डाला था। तो इस तरह से जो बुद्धि है, यदि इस तरह से रखना, ये एक तरह का भागवत अपराध है। उनके महत्व को नहीं जानना, नहीं समझना, एक तरह का अपराध है। तो ये भागवत अपराध। दूसरा एक सेवा अपराध है, वो मैं आपको थोड़ा बतलाऊंगा कि सेवा में क्या अपराध है। नामापराध तो आप रोज बोलते ही हैं, तो जो 10 नामापराध है वो भी जानना जरूरी है। और वैष्णवापराध, वैष्णवों का अपराध। तो सबसे ज्यादा खराब अपराध कौन सा है? वैष्णव अपराध। नामापराध किससे दूर किया जा सकता है? यदि मान लो नामापराध, किसने कहा नाम से, वो सही है कि नामापराध को तो दूर किया जा सकता है। नाम और ज्यादा लेने से, ज्यादा इंटेंस नाम में ज्यादा फोकस लेने से नामापराध दूर हो सकता है। पर यदि आप वैष्णव का अपराध करेंगे, उसे भगवान भी माफ नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल क्या देंगे आप? अम्बरीश महाराज और दुरासा मुनि, वो सभी जगह आए, भगवान के पास भी गए, विष्णु भगवान के पास भी गए। उन्होंने कहा कि हम भक्त पराधीन हूँ, ये अस्वतंत्र इव द्विज, कि हे द्विज मैं अस्वतंत्र हूँ, मैं पराधीन हूँ। किसके पराधीन है? भगवान भक्त के पराधीन है। भगवान गोपियों को भी कहते हैं कि न पा रहे हम, निरवध कि मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता। मैं भगवान को गोपियां एक छाछ के कटोरे पर नचा देती थी, पादुका लाओ, इधर जाओ, नाचो, गाओ, बांसुरी बजाओ, और भगवान सब कुछ करते थे। इसलिए कि वो भक्तों के अधीन रहते हैं, क्योंकि भक्तों को और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों को क्या चाहिए? भक्त किस क्या मांग करते हैं? भगवान का मतलब कृष्ण सुख है, तात्पर्यमयी भक्ति। भगवान कृष्ण का सुख ही चाहते हैं। मतलब भक्त लोग मात्र भगवान के सुख के अलावा अपने सुख की कभी परवाह नहीं करते। कभी पांडवों ने कभी भगवान की कभी शिकायत की कि मेरे दोस्त हैं हमारे, मतलब माँ मेरा भाई हैं और हम इतने दुख में हैं। उन्होंने कभी कहा कि हमारे दुख काटा दो? भगवान जो चाहते थे वो करते हैं, और वही वास्तविक भक्ति है कि भगवान के सुख के लिए जो कुछ किया जाए, भगवान को आनंदित करने के लिए किया जाए। जो हम आनंद करते हैं अपनी इंद्रियों को, जो हम है ही नहीं, हम न इंद्रियां हैं, न शरीर हैं, न सूक्ष्म शरीर है, न ग्रास बॉडी है, उसी को हम सुख कर्म में लगे, वो टेम्पररी है। देह का सुख टेम्पररी है, देह जाने वाली है, न जाने हम कितनी लाखों करोड़ों 84 लाख योनियों की देह ले चुके हैं। उसी को सुख को सब कुछ मानना और भगवान के सुख को नगण्य समझना। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी का 10 रुपए का नोट गुम गया तो वो नोट की चिंता में रहेगा, कहाँ चला गया, रोएगा विचार में उसके माइंड में। पर यदि भगवान या कोई भक्त आ गए, उसकी वो इतनी चिंता नहीं करता, मतलब उसको वो 5 रूप के बराबर भी भगवान को या भक्तों को नहीं मानता, जो गुम गए उसके कैसे मिल जाएंगे, क्यों चला, भले वो जानता भी है कि मिलने वाले नहीं है तो भी उसकी चिंता में वो खोया रहता है। तो हमें भगवान से कितना प्रेम है, हम भगवान को कितना समझते हैं, ये जानना जरूरी है। तो वैष्णव अपराध की तुलना किससे की गई है, मत गज हाथी का अपराध जैसे। मत हाथी किसी बगीचे में आएगा तो सब पेड़ पौधों को काट देगा, इसलिए हमारी जो भक्ति लता जो है जो बहुत ही नाजुक है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी वैष्णव अपराध करने से। इसलिए अब वैष्णव अपराध क्या होता है, इस वैष्णव अपराध किसे कहेंगे, श्री गौर नित्य की जय, श्री रस बिहारी जी की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो वैष्णव अपराध किसे कहते हैं, ये बोली वैष्णव अपराध क्या क्या चीजें हैं जिसे आप वैष्णव अपराध कहेंगे, वो क्या क्या है। वैष्णव की निंदा करना, निंदा को सुनना, उनके प्रति द्वेष रखना मतलब उनसे जलन रखना, क्रोध करना, उन्हें देख करके अभिनंदन न करना, उन्हें देख करके हर्ष प्रकाशित न करना कि अरे वैष्णव का संग हुआ कितना अच्छा है, उन्हें कोई आनंद न होना, उनमें वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि का, अरे ये तो चमार था पहले, भंगी था, मैं तो वैष्णव हूं ब्राह्मण हूं, तो इस तरह से यदि मन में बुद्धि आएगी तो जाति बुद्धि करना ये भी एक तरह का अपराध है, या उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार करना, उन्हें चिल्लाना, गाली गलौज करना। तो इसे चैतन्य महाप्रभु ने भी एक तरह का संघातिक बताया है, संघातिक यानी पूरा ही संवार कर डालने वाला है, सबसे अधिक संघातिक और एक तरह का मक्त एलिफेंट के जैसा है। तो शास्त्रों में 32 सेवा अपराध कहे गए हैं। आप नामापराध जानते हैं, वैष्णव अपराध के बारे में हमने कुछ चर्चा की, भागवत अपराध के बारे में चर्चा की, पर ये जो सेवा अपराध है तो ये जितने हैं 64 अंग भक्ति के दिए गए हैं शास्त्र में, भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अवयव दिए गए हैं। पहले जो 20 जो हैं वो एक तरह का द्वार है भक्ति में प्रवेश करने का, मतलब भक्ति में सिर्फ जाने के लिए आपको प्रथम, तो सबसे पहला क्या है उसमें, सबसे पहला 64 जो भक्ति के अंग है उसमें सर्वप्रथम क्या है, गुरु पादाश्रय। बिल्कुल सही, गुरु पादाश्रय लेना, उसी से फिर आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरु वैष्णव तो है ही है, तो उनका आश्रय लेना, इसी से आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वो क्यों, वो भी अपन इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा आपको ये सेवा अपराध, सो अपराध यानी जो हमें भगवान की सेवा से दूर करें, तो ये सेवा अपराध क्या क्या है, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो 32 तरह के जो सेवा अपराध हैं, मतलब आप लोग सब मंदिर में आते हैं, और मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि ये भी एक तरह का इंद्र भी अपराध ही कर रहा है, और यही कारण है कि उसने भगवान के प्रति भी अपराध किया। उसके मन में यह आया कि मैं भगवान ये मतलब भगवान के प्रति क्रोध आना, भगवान जब मतलब गिरे वहां थे व्रज में, तो उनके प्रति करना, ये भी इस कारण, ये किस कारण से हुआ, क्योंकि ये उसने कयाधु को बांध करके प्रहलाद महाराज के प्रति भी एक तरह का अपराध किया था, और पर तो भी भगवान उससे खुश थे ब्रह्मा जी के बजाय। क्यों खुश थे ब्रह्मा जी के बजाय, इंद्र के तो उन्होंने माफ कर दिया, उसे बोला भी इंद्र सुरभि गाय लाया और अभिषेक किया, इंद्र ने भी ऐरावत से ऊपर के स्वर्ग लोकों से जल ला करके उनका अभिषेक किया, इसी तरह से उसमें अभी गोविंद कुंड भी है, सुरभि कुंड है, तो वो तो उसने भगवान को खुश कर लिया, भले उसका अपराध बहुत जघन्य था नॉर्मल देखने पर, ऐसा देखा जाए तो वो तो व्रज के सब जनों को मार डालना चाहता था, व्रज को डुबा देना चाहता था, और ब्रह्मा ने तो थोड़ी परीक्षा ही की, गायों को बछड़ों को, गायों को और बछड़ों को मतलब बछड़ों को और दूसरे गोपों को उन्होंने एक गुफा में कैद कर लिया थोड़े दिनों तक। कितने समय के लिए कैद किया था, 1 साल के लिए, तो इतने समय के लिए कैद किया, पर उस भगवान उसे कुछ उन्होंने स्तुति की ब्रह्मा जी ने, तो भी उन्होंने भगवान ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं, आकर के उन्होंने कई तरह की अच्छी स्तुतियां की तो भी भगवान ने उनकी तरफ देखा नहीं। तो इंद्र का अपराध तो बहुत ज्यादा था, वो तो मार डालना चाहता था, ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया तो भी भगवान उससे खुश थे, क्यों थे ना, भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया, मतलब खुशी थे कि कोई बात नहीं, जाओ बेटा ठीक है अपना राज्य करो, तो अपना राज्य करता रहा, इंद्र पद संभालता रहा, चाहते थे इंद्र से उसे अलग भी निकाल सकते थे। उसका कारण ये था कि उन्होंने भगवान की लीला में उसने इंद्र ने सहायता की। कई दिनों से जो इंद्र मतलब जो एक साथ रह करके भगवान ने गोवर्धन उठाया, सब भक्त एक साथ हो गए। गाय भी चाहती थी कि हम भगवान को देखें, राधा रानी चाहती थी, गोपियां चाहती थी, सब कोई गोप बाल भगवान को अपने नजदीक चाहते थे। इसलिए उसने भगवान को मतलब भक्तों की सबकी अभिलाषा पूर्ण की। भक्त भगवान भी चाहते थे मेरे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करूं। और ब्रह्मा से क्यों नाराज हुए? तो उन्होंने भक्तों को दूर कर दिया भगवान से। 7 दिन एक महीने एक साल के लिए भगवान के पास में भक्त नहीं थे। भक्तों को भगवान से दूर करना ये जघन्य अपराध है, उनसे मिलाना। और इसी तरह से जीवों को भी सबसे बड़ी जीव दया क्या है कि भगवान से अपने उनके जो बिछड़े हुए जो बच्चे हैं उनको मिला देना सबसे बड़ी जीव दया है। आप रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे। मान लो बच्चा माता से अलग है, आप थोड़े समय तो उसे टाय दे देंगे, खाने के लिए मिठाई दे देंगे, कुछ समय तो खुश रहेगा कि अच्छा अच्छा है। पर जब उसे बाद में जब वो माँ का स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, तब कुछ भी जोर से चीखेगा माँ, और वो इतना जोर से कि माता कैसे भी काम कर रही हो छोड़ करके आ जाएगी और उसे लगे कि बेटा मैं यही हूँ, तुम रो मत। तो इस तरह से हमें भी भगवान के लिए जब हम रोएंगे, हम इतना मतलब आकर्षित होंगे, या ये कहिए कि हम हृदय की आकुलता बतलाएंगे, हृदय में इतना विचलन आकुलता भगवान के प्रति हमें कि भगवान के बिना मैं रह ही नहीं सकता। ये भक्ति का मूल्य क्या है? भक्ति किसे मिलती है? उसको खरीदना तो पड़ेगा ना। हर चीज का कुछ न कुछ मूल्य है संसार में, फ्री में कुछ मिलता है क्या? क्या है? लौल्यम अपि मूल्यम, लोलुपता होना। लोलुपता है ना आपको भूखापन लगे, ये मुझे चाहिए चाहिए मुझे ये होना, तो लोलुपता है भगवान के लिए। मतलब भगवान के लिए इतना अधिक आकर्षण कि उसके बिना हम रह न जाए, भगवान के लिए इतना रोना इतना गाना कि कोई भी संसारिक चीज आपको खुश न कर सके, तो आपको भगवान मिल सकते हैं। मतलब लोलुपता होना जरूरी है भगवान के लिए, लोलुपता होना। तो अपन थोड़ा ना ये सेवा अपराध के बारे में बातें करेंगे कि 32 प्रकार के हैं। गाड़ी पालकी में जाकर के या जूता पहन करके जूता खड़ो मंदिर में जाना, उत्सवादि भगवान के न करना या उसमें योग न देना, जैसे कि जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, उसमें योग देना चाहिए, जो कुछ भी अपने से हो सके वो करना चाहिए। विग्रह के सामने आने पर प्रणाम न करना, ये भी एक तरह का अपराध है। आप आते हैं मंदिर में तो भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। दंडवत प्रणाम का मतलब है अष्टांग प्रणाम, अष्टांग 8 अंगों को, मतलब पैर, घुटने, सीना, पेट, आपका हाथ, हाथ के टखने, सिर, फेस, ये सभी जब भगवान को समर्पित होते हैं एक तरह का। और इसका महत्व कितना है? शास्त्रों में 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर एक बार का दंडवत प्रणाम होता है, अष्टांग प्रणाम होता है। स्त्रियों के लिए मंदिर में वर्जित किया गया अष्टांग प्रणाम, क्योंकि बॉडी के कुछ पार्ट खुले हो सकते हैं, पर आदमी को हमेशा प्रणाम, मतलब एक तो पंचांग प्रणाम होता है, सीधे थोड़े से सिर टेक करके घुटने से आप टेकें, वो पंचांग प्रणाम होता है। पर अष्टांग प्रणाम करना आवश्यक है, कम से कम दिन में कुछ बार तो, 3 त्रिकाल संध्या करते हैं, 3 बार तो होना ही चाहिए। तो विग्रह को प्रणाम न करना असुचि अवस्था में, मतलब जूठे मुंह से या टॉयलेट के बाद में बिना हाथ मुंह धोए पैर धोए मंदिर में आना या भगवान की वंदना करना अपराध है। एक हाथ से प्रणाम करना, जैसे टाटा आप किसी को कहते हैं, तो वो भी एक तरह का अपराध है। विग्रह को पीठ दिखा करके प्रदक्षिणा करना, इसलिए हम प्रभुपाद या विग्रह के आगे हम घूम करके जाते हैं ताकि अपनी पीठ भगवान की तरफ न रहे। या बैठना, जैसे अभी आप सामने बैठे हैं, भगवान की तरफ पीठ नहीं है, ये ज्यादा ये उचित है, पर यदि भगवान की ओर पीठ करेंगे तो एक तरह का सेवा अपराध होता है। या और घुटने पकड़ करके जैसे इस तरह से बैठ जाना, ये भी एक तरह का अपराध है। आप घुटनों को और हाथ से फोल्ड करके कभी थकावट के मारे ऐसा करते हैं, पर वो भी एक तरह का अपराध है। या पैर लंबे करना, वो भी अपराध है। मूर्ति के सामने सो जाना, मूर्ति के सामने भोजन करना, इसलिए कर्टन बंद किए जाते हैं। जहां मंदिर में जगह नहीं होती, मंदिर में प्रसाद वितरण होता है, तो वहां कर्टन बंद कर दिया जाता है। या भगवान के सामने या मूर्ति के सामने झूठ बोलना, ये भी उसका पाप काफी ज्यादा है। उच्च स्वर से चिल्लाना या आलाप करना, परस्पर बातें अपनी करना बजाय भगवान की बातें में बारे में या संसारिक बातें करना, भगवान के सामने रोना भी गलत है। मतलब रोना यानी लोग अधिकतर संसारिक चीजों के लिए रोते हैं, भगवान के लिए रोना हो तो उनके प्रेम की प्राप्ति के लिए रोइए, न कि संसारिक चीजों के लिए। भगवान मैं तो नष्ट हो गया, सब कुछ मेरा लूट गया, मेरे किसी ने पैसे डुबा दिए, या जो कुछ मेरा जाप चला गया, या तो इस तरह से भगवान के सामने रोना ये ठीक नहीं है। भगवान तो घट घट के वासी हैं, सभी कुछ जानते हैं, तो उनके आगे प्रदर्शन करके मतलब भगवान को एक तरह का हीन दिखाना है कि वो जानते ही नहीं है। भगवान के सामने झगड़ा करना, मूर्ति के सामने किसी के प्रति अनुग्रह या निग्रह करना, अनुग्रह करना भी कि मैं इतना बड़ा हूं, मैंने इतना दान कर दिया, तो ये भगवान के सामने मतलब गुप्त दान का भी काफी महत्व है। गुप्त दान कर सकते हैं, मतलब अपने नाम का प्रकाशित न हो, बिना किसी के जाने में आप दें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि अपना ग्लोरिफिकेशन गा करके कि मैंने इतना दिया है। पर कभी कभी दूसरों को उत्साहित करने के लिए, दूसरे उससे इंस्पायर हो सके, यदि उस पर्पज के लिए नाम यदि बोला जाता है तब तो वो ठीक है कि उसने इतना दिया मैं भी इतना दूंगा, तो इस तरह से कंपटीशन की भावना हो, वो जलन की अपने नाम के लिए ना हो, तब तो वो ठीक है। कंबल ओढ़ करके सोना या कंबल ओढ़ करके जो कि कभी धुलता नहीं है, पर निंदा करना मूर्ति के सामने, या पर किसी की स्तुति करना भगवान के आगे किसी और की स्तुति करना, या भगवान के सामने कोई अश्लील कथा कहना भगवान की कथा के अलावा, अधोवायु त्याग करना, या मुख्य उपचार सामर्थ्य होते हुए भी गौण उपचारों से पूजा करना। ये गौण सेवा क्या होती है और मुख्य सेवा क्या होती है? मुख्य सेवा ने जैसे आप प्लास्टिक के फूल ले आए और एक रियल फ्लावर है, सुगंधित है वर्सेस सुगंधित नहीं है, तो भगवान को सुगंधित फ्लावर्स और जो मौसम के अनुसार देना। इसी तरह से यदि ये जैसे भगवान की जो सेवा है वो दो तरह की, ये तो नित्य उपासना, नित्य सेवा। नित्य सेवा क्या होती है? नित्य और दूसरी आप गौण कहिए या नैमित्तिक, नित्य धर्म और नैमित्तिक धर्म। नित्य धर्म क्या है और नैमित्तिक धर्म क्या है? आपने इस वर्ड सुने होंगे कि नित्य धर्म करना। नित्य धर्म है ना, हम जो नित्य आत्मा जो है, आत्मा के लिए भगवान का नाम स्मरण, जो नवदा भक्ति है, भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्तों का संग, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, ये सभी नित्य धर्म है। नैमित्तिक धर्म क्या है? सवेरे उठ करके ब्रश करना, मंजन करना, नहाना, ये शारीरिक धर्म है, शरीर के लिए चाहिए। तो नित्य धर्म जो आत्मा के कल्याण के लिए है वो नित्य धर्म है, आत्मा के उद्धार के लिए है, आत्मा से जो संबंधित है, आत्मा के लिए हम जो करते हैं वो नित्य धर्म है। और शरीर के लिए आपने किसी संबंधी के लिए जो कुछ करते हैं, जैसे लड़की की शादी करना पिता का कर्तव्य है, तो पर ये कर्तव्य गौण है, ये नैमित्तिक है, ये नित्य नहीं है, ये इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहने वाला है। ड्यूटी करना, ये ड्यूटी हर कोई की कुछ न कोई ड्यूटी रहती है, जैसे वर्णाश्रम धर्म है, तो वर्णाश्रम धर्म ये ब्राह्मण का धर्म अलग है, वैश्य का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, ब्रह्मचारी का अलग है, सन्यासी का अलग है, तो ये भगवान की भक्ति है क्या? वर्णाश्रम धर्म भगवान की भक्ति नहीं है, मतलब ये टेम्पररी है, शारीरिक है, तो वर्णाश्रम भक्ति नहीं है। भगवान की डायरेक्ट सेवा एक अलग चीज है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना एक तरह का नैमित्तिक धर्म है। तो जो ऋतु में जो फल होता है उसे भगवान को अर्पण न करना, जिस भी ऋतु में जो स्पेशल फ्रूट होता है उसे भगवान को ला करके, कोई भी चीज उन्हें ला करके खिलाना, और द्रव्य का या किसी चीज का किसी को और देकर के बचा हुआ भगवान को देना। बच्चे के लिए खाना बनाना है, बच्चे के लिए दिया दे दिया। कभी कभी मैंने तो यहां तक देखा कि लोग शाम को खाना बनाते हैं, थोड़ा सा रख लेते हैं कि हम सवेरे जब पूजा करेंगे, मतलब दिन में एक ही बार अर्पण करते हैं, और तो वो रख करके वो जो बचाया भगवान के उसे दूसरे दिन देते हैं। ये कहां तक सही है? पर कई घरों में मैंने ऐसा होते हुए देखा है कि वो निकाल लेंगे कि ये भगवान के लिए है, अब जब दूसरे दिन सेवा करेंगे भगवान को अर्पण कर देंगे। मतलब भगवान को एक तो दूसरे को मुख्य समझना, बच्चों को पहले दे देना, या भगवान के लिए जो उन्हें वासी या दूसरे दिन का बना हुआ जो एक दिन पहले बना हुआ है भगवान को देना, ये ठीक नहीं है। जब भी आप करें, वास्तव में हमें अपने आप को पहले भगवान के समर्पित करना चाहिए, उसके बाद में जो कुछ आप करेंगे भगवान की सेवा होती है, पर आपने पहले पहले सेवा की और फिर समर्पण किया, ये ठीक नहीं है। अपने आप को समर्पण करके जो कुछ है, जो कुछ भी आप करते हैं, तब वो पूरा ठीक तरह से समर्पित होगा। मूर्ति के सामने पीठ करके बैठना, मूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति को अभिवादन करना, मूर्ति के सामने गुरु के अलावा और किसी व्यक्ति को अभिवादन करना भी गलत है, क्योंकि भगवान सबसे बड़े हैं, तो जो कुछ अभिवादन करना हो भगवान के लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। और कोई गुरुदेव या कोई प्रश्न पूछता है, चुप रहना वो भी ठीक नहीं है, उसे मतलब जवाब बराबर देना चाहिए। प्रशंसा अपने आप करना और देवता की निंदा करना, ये जो है ये 32 अंग जो है ये सेवा अपराध कहे जाते हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। तो इन्होंने दोनों तरह के अपराध इंद्र ने किए थे, वैष्णव अपराध किया है क्योंकि प्रहलाद महाराज वैष्णव थे बिना जाने, और उन्होंने एक स्त्री को बंधन में बांध करके एक तरह का पाप किया है, और पाप का प्रायश्चित क्या है, यदि किसी ने पाप किया हो तो पाप का प्रायश्चित क्या है, सेवा अपराध का प्रायश्चित क्या है, नामापराध का प्रायश्चित क्या है, वैष्णव अपराध का प्रायश्चित क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। तो पाप का प्रायश्चित एटोनमेंट हो जाता है, कुछ तरह का यज्ञ दान कुछ भी आपने किया, मतलब पाप का प्रायश्चित बहुत आसान है। यहां तक कहा गया है कि एक बार भगवान का नाम, इवन वो नामाभास हो, तो नामाभास में इतनी शक्ति है कि जितने भी आपने पाप किए हों जन्म जन्मांतर के, वो पाप समाप्त हो जाते हैं। मतलब सभी तरह के पाप, गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, किसी के साथ गुरु पत्नी के साथ आपका संबंध जुड़ गया, वो सभी एक तरह के पाप हैं, और वो पाप भगवान के एक नाम लेने से समाप्त हो जाते हैं। पर क्या नहीं हो पाता, मतलब जो टेंडेंसी जो हो चुकी है, जैसे चोरी करने की, हत्या करने की, ये टेंडेंसी एटोनमेंट से, एटोनमेंट मतलब उसका एक पाप का, पाप को से समाप्त करने का एक तरीका है, तो एटोनमेंट से पाप आपके सब जल समाप्त हो सकते हैं। पर क्या चीज समाप्त नहीं होती, जो प्रवृत्ति जो पाप करने की जो है वो कभी भी इन चीजों समाप्त नहीं होता, तो एटोनमेंट से ये समाप्त, तो किससे समाप्त होता है प्रवृत्ति, नाम लेने से। पर नाम निरपराध लेंगे, यदि आप नाम जिंदगी भर तक लेते रहे पर साथ में नाम का वैष्णव अपराध करते रहेंगे, तो वैष्णव अपराध की मतलब आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं या वैष्णव अपराध हो रहा है वो आप कैसे जानेंगे, कैसे पता चलेगा कि आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं, हाँ भक्ति में रुचि कम जाएगी, सांसारिक विषयों में रुचि ज्यादा होगी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो भक्ति में जब रुचि कम होने लगे या उस मतलब आपके अश्रु न बहते हो, आपके भाव कुछ भी न आते हो, भगवान के प्रति प्रेम न बढ़ता हो, ओ ये सब क्या है, ढकोसला है, किसने भगवान को देखा है, होगा कि नहीं, मैं तो बड़ा दुखी हूं, और इस तरह से जब विचार आने लगे भगवान की भक्ति के अलावा, तो ये समझना चाहिए कि आप वैष्णव अपराध कर रहे हैं। और तो वैष्णव अपराध किससे दूर होता है, हाँ जिससे अपराध किया उसकी क्षमा मांगना। रूप गोस्वामी भी एक बार हंस दिए थे, वो भी अनजाने में अस्तावक्र मतलब आ रहे थे, तो वो वास्तव में तो वो भगवान की कुछ लीला का स्मरण करके कि राधा रानी को उन्होंने लटका दिया, कृष्ण ने राधा रानी ने हाथ पकड़ा ब्रांच से, उनके स्मरण में लीला में आ रहा था कि वो, और भगवान ने वो शाखा को छोड़ दिया, पहले तो नीचे आके कि फूल तोड़ ले, फिर छोड़ दिया और राधा रानी लटक रही है, तो ये देख करके उन्हें कुछ हंसी आ गई। तो उधर से कोई महात्मा आ रहे थे, अस्तावक्र नहीं, कोई दूसरे साधु संन्यासी आ रहे थे, वैष्णव आ रहे थे, उन्होंने हंसी को देख करके समझा कि ये मुझे देख करके हंस रहा है, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ उन्होंने कुछ श्राप नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, पर उनकी लीला स्मरण खत्म हो गई। लीला स्मरण खत्म होने से तो उन्होंने अपने बड़े भाई को पूछा कि अब मैं भगवान के स्मरण कर ही नहीं पा रहा हूं, मतलब नाम मतलब स्मरण भी जरूरी है, नाम गुण लीला मतलब स्मरण करना, हम कहते हैं ना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो श्रवण और कीर्तन के बाद में स्मरण आता है, श्रवण का मतलब ही हम स्मरण कर सके, आप बार बार नाम बोलते हैं ताकि भगवान का और नाम का या भगवान के गुणों का हम स्मरण करते रहे दिन भर, चीसों घटे सततम कीर्तयंतो माम। तो वो उन्हें नहीं हो रहा था। किनको नहीं हो रहा था? रूप गोस्वामी को। तो उनके भाई से उन्होंने पूछा, तो भाई ने कहा आपने कुछ वैष्णव अपराध किया होगा, आप देखिए। तो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, तो उन्होंने कैसे पता लगाया? फिर उन्होंने जिसके भंडारा किया, सबको आमंत्रित किया, पर एक वैष्णव, सब जगह के लोग आए पर एक व्यक्ति नहीं आया कि मेरे पर हंस रहा था, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो उसके घर गए फिर, तो उस समय इतने ज्यादा लोग नहीं थे ब्रज में, तो वो आसान था पता लगाना। पर अब तो कितने ही वैष्णव है, कितने ही लोग हैं, पता कैसे लगाएंगे? भंडारे भी करेंगे, कोई आता है कोई नहीं आता है, उनका घर पता, किसी को कुछ पता नहीं, तो क्या करेंगे आप? जनरल जो मास मीडिया है उसमें आप भेजिए और लिखिए, न्यूज़पेपर में प्रकाशित कीजिए कि मैंने ऐसे किया, और बहुत ही अपना आर्थ ज्ञापन करना कि ये मेरे से ऐसा हो गया है, आप मुझे जो भी वैष्णव मुझे क्षमा करें। मतलब डायरेक्ट उस वैष्णव से क्षमा मांगना और उनकी सेवा करना। वैष्णव सेवा के द्वारा वैष्णव अपराध दूर होता है, पर पर्टिकुलर वैष्णव से माफी मांगना बहुत जरूरी है। मतलब किसी की निंदा भी कर लेना, किसी के बारे में गलत सोच लेना, ये भी एक तरह का वैष्णव अपराध है, और वैष्णव अपराध का ही परिणाम है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, भक्ति हमें चौक हो जाएगी, भक्ति रुक जाएगी। तो इस तरह से 64 अपराधों में से 20 अपराध जो पहले 20 अपराध नहीं 20 जो पहले हैं वो भक्ति के द्वार हैं, और भक्ति में आने के बाद फिर आपको जो 5 चीजें, ये फिर ये नहीं करना, ये 32 तो मैंने आपको बताया है, सेवा अपराध और भी कहीं है, पर अंत जो 5 हैं, तो वो 5 आप सभी जानते हैं कि जो 5 महत्वपूर्ण जो चैतन्य महाप्रभु ने बतलाए हैं, तो वो क्या चीजें हैं 5, फिर हम कुछ और चर्चा करेंगे। पर ये 5 चीजें क्या हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, चैतन्य चरितामृत में भी दिया हुआ है। साधु संग, नाम कीर्तन, एक तो साधु संग भक्तों का संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, सकल साधन में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ 5 साधन जो हैं, यही पंचअंग, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचअंग, कृष्ण प्रेम जन्माय ही पांचेर अल्प संग, इन 5ों का अल्प समय में भी संग करेंगे तो आपका कृष्ण के साथ में कृष्ण प्रेम हो जाएगा। ये कृष्ण का प्रेम जन्माने की ये 5 तरीके बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ आपको कहने और कहूंगा, ये अपराध के बारे में तो आप समझ ही गए हैं कि अपराध क्या है, कि ये पाप क्या है, गौ हत्या, आत्महत्या, गुरु ब्राह्मण, परिस्त्री गमन, ये महापाप कहे गए हैं। तो पापों और इनके उपाय भी शास्त्रों में प्रायश्चित बतलाए गए हैं, तो उनसे वो मुक्त हो सकता है। पर निंदा करने वाले एक व्यक्ति का कहा गया है कि निंदा करने वाला एक भी व्यक्ति का संग न करो, हजारों पापियों का संग भले ही कर लो, क्योंकि एक निंदक के सिर पर कोटि कोटि पापियों का भार रहता है। तो निंदा जो है, मतलब वैष्णव की जो निंदा करता है, उससे अलावा और ज्यादा कोई पाप, मतलब वो उसे आप पाप अपराध है, उससे बड़ा और कोई अपराध नहीं होता। अपराध रहित मनुष्य के समस्त पापों में, समस्त पापों की जड़ वासना, पाप वासनाओं को केवल एक श्री कृष्ण नाम नाश कर देता है। ये तो हम लोग बातें कर चुके हैं, अब कुछ 4 बातें आपसे करते हैं जो इसमें दिया हुआ है। ये जो 4 बातें मैं आपको बतलाता हूँ, रूप गोस्वामी की जो है उसमें ये दिया हुआ है, कृष्णे तीयश गिरितम मनसांद्री ये दीक्षास्ती ये प्रणति भिष्य भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हरदम इप्सित संग लब्ध्वा। तो भगवान का नाम कृष्णेति तस्य, तो 4 तरह की बातें हैं। तो कृष्णेति यश, जिन्होंने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, उसका हमेशा हमेशा आदर करना चाहिए, मन में कम से कम आदर करना चाहिए। एक बार लो, या जो निरंतर लेता हो, नाम का गान करता हो, जय जयकार करता हो, कृष्ण कृष्ण गुणगान करता हो, कि प्रभु की बड़ी कृपा है कि जिसके जीव पर भगवान का नाम विराज रहे हैं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अनेक यत्नों के बाद भी मतलब भगवान का नाम लोगों के मुंह से नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? कई लोग भगवान का नाम बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते भगवान का नाम? सरल है, आप सब कुछ बोलते तो भगवान का नाम क्यों नहीं बोल सकते? उन्होंने पाप इतने किए, अपराध इतने किए हैं, उनसे भगवान बहुत दूर रहते हैं, उनके नाम मुंह से एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलता। वो जो मतलब ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना जो हेलो हाय बाय बाय करते हैं, बजाय भगवान का नाम यदि लेने के बजाय टाटा कर लिया, बाय, क्या मतलब क्या है? तो आप उन्हें कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण कुछ भी आप जो निकले बोलें तो आपका भी हरि बोल इस तरह से संबोधन करना नहीं तो एक तरह का वाणी को अशुद्ध करना ही हुआ। आप प्रणाम कीजिए नमस्कार कहिए वो ठीक है। तो जिन्होंने जो जिनके मुंह से कृष्ण का नाम निकलता है उनका मन से आदर करना ये तो कृष्ण ये शिगिरितम मनसांद्री ये था उनका मन में आदर करना दीक्षा से और जिन्होंने दीक्षा ली हुई है गुरुदेव के चरणाश्रित हो गए हैं उनको प्रणाम द्वारा सम्मान करना जो चरणाश्रित है मतलब कृष्ण तो बोलेंगे ही इसलिए उन्हें प्रणाम के द्वारा कीजिए। तीसरा है जो भजन प्रणाली को जानते भजन विज्ञ मनन्य मनन्यम अन्य तो जिन्होंने भजन जो जानते हैं सदैव से भक्त की जो ऐसे भक्तों की सेवा करना चाहिए जो भजन करते हैं सुश्रुषया सुश्रुषयान ऐसे भक्तों की सेवा करना चाहिए। और जो ऐसा साधक हो जो कृष्ण का अनन्य निष्ठ है अनन्य है भगवान कई जगह भगवद गीता में अनन्य शब्द का यूज किया है अनन्या चिंतयंतो माम ये जना परिपास येषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वाहन्यम अनन्य इवन जो हम कहते हैं जो 66वां श्लोक क्या है भगवद गीता का 1866 सर्वधर्मान पर माम एकम एकम से मतलब फिर अनन्य है कि मेरे ही शरण में आई। इस तरह से कई जगह भगवद गीता में अनन्य भक्ति की बात कही है। तो भगवान नहीं चाहते दूसरों की भी भक्ति हो क्या स्वार्थी है वो दूसरों का नाम लेने से मना क्यों करते हैं दूसरों के पास जाने से मना क्यों करते हैं क्योंकि भगवान में ही सब कुछ आ गए उनको अन्य जगह जाने यदि हम अन्य जगह जाएंगे तो वास्तव में वो अनन्य भक्ति नहीं है। देवी देवताओं का पूजन वगैरह या कई तरह के व्रत उपवास भगवान के अलावा कृष्ण के अलावा और कई जगहों की कई शास्त्र पढ़ना मतलब शिव अंक या कई तरह के अंक दुर्गा के बारे में या और कईयों के बारे में पढ़ेंगे तो उससे मन उस तरफ जाएगा। इवन दूसरों के मंदिर में भी जाने में ये हो सकता है मतलब आदर देना एक अलग बात है। चैतन्य महाप्रभु शंकर भगवान के मंदिर में गए आदर देना वो ठीक है उनकी मन स्थिति बहुत ऊंची होती है तो उन्हें सबको एक जैसे मानते हैं। पर हम यदि शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के यही सब सर्वश्रेष्ठ भगवान है या दुर्ग तो फिर वो एक तरह का नामापराध भी होगा वैष्णव अपराध भी होगा भगवान के प्रति अपराध भी होगा भगवत अपराध होगा। तो दूसरे मंदिरों में जाकर के भावना यही होना गोपियां गई थी कात्यायनी के पास पर कृष्ण की सेवा के लिए कृष्ण की भक्ति के लिए कृष्ण हम ले यदि ये होता है तो ठीक है। तो जो अनन्य जो कृष्ण निष्ठा में जो है उनका क्या करना चाहिए उनके साथ जो भजन प्रणाली में गुरु दीक्षित हो और तो उनकी तो सेवा करना पर जो अनन्य भक्त है भगवान का जैसे प्रभुपाद जैसे उनके लिए क्या करना चाहिए हाँ उनका संग बिल्कुल यही कहा गया है कि भजन विज्ञम अनन्य अन्य निंदादि शून्य हृदय इच्छित संग लब्धवा यानी उन लोगों का संग करना चाहिए। ये चार बातें ये जरूर है यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें इन चार बातों का पालन करना चाहिए। तो ऐसे तो कई बातें हैं जो हम आगे अब आप लोगों का ये पुस्तकें वितरण करने का या मैराथन का समय आ चुका है या समय है तो आप उसे पूर्ण रूप से पालन कीजिए। ये भी एक तरह का क्योंकि प्रभुपाद बहुत ज्यादा चाहते हैं तो प्रभुपाद का संग तभी आपको मिल पाएगा यदि आप पुस्तकों का वितरण ज्यादा से ज्यादा करें कृष्ण भक्ति फैलाए। और ये सबसे ज्यादा जीवों की दया है जीवों पर सेवा है और ये प्रभुपाद की एक तरह की संघ ही है मतलब यदि हम प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं या प्रभुपाद के कार्य जो हैं उन्हें अपनाएंगे तो प्रभुपाद का एक तरह का ये हमारा संघ हुआ वाणी और वपु। तो वाणी का यदि हमने संघ किया वो भी एक तरह का संघ है तो वाणी का संघ उनकी शिक्षाओं को लेना उन्होंने जो ऑर्डर दिए हैं उन्होंने जो रिक्वेस्ट किए उसका पालन करना तो आप सब लोग कर ही रहे हैं बड़े मात्रा में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये बहुत अच्छी बात है आप उसे आगे बढ़ाइए। और जहां तक हो गांव छोटे से छोटे गांव में भक्ति का प्रचार कीजिए क्योंकि भगवान चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं पृथ्वी से आते अच्छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगे मोरो नाम कि मेरा नाम प्रचारित हो गए तो आप उसमें निमित्त बनिए। भगवान तो कर ही चुके हैं उनका कहना और करना एक ही है भगवान जो चाहते हैं भले एकदम न दिखता हो वो बात अलग है समय हमें दूर रख रहा है और कहां भगवान का नाम कहां कई लोग जानते नहीं है गांव में कोई लोग जानते पर आप समझ लो कि वो जान चुके हैं जानते नहीं है, तो आप उसे निमित्त, जैसे अर्जुन को निमित्त मात्र भव सभी साचिन, भगवान उसे निमित्त बना रहे हैं अर्जुन को, भगवान मार चुके थे ये असुर बालक बर्बरीक ने, ये देखा था सिर को काट करके रखा हुआ था, वो देख रहा था कि लड़ाई किसने लड़ी है, तो उसने कहा एक ही मैं पुरुष को देख रहा था जिन्होंने सबको मारा, और वो थे कृष्ण। और कृष्ण ने अपना विराट रूप या बता करके भी बतलाया था कि मैं, मेरे ही कारण ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करो। तो हम भी यदि प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करेंगे तो आगे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए हमें अपने शारीरिक चिंता के बजाय भगवत चिंता, भगवान की खुशी किसमें होगी इसे हमें देखना है, न कि हमारी खुशी, हमारे इंद्रियों की खुशी। भले कितने भी हमें तकलीफ आए संसार में, पर यदि हमें भक्ति मिलती है तो सर्वश्रेष्ठ है। मतलब ये जो जीवन की कुर्बानी हमें भगवान के लिए करना है। आप कहेंगे हम कैसे कुर्बानी कर दें, शरीर तो खाने के लिए नहीं है, या कई लोग ऐसे कर सकते हैं, मतलब भूखे पेट भजन नहीं हो सकता, भूखे भजन न हो ही न गोपाला, भजन कैसे होगा। भगवान की कृपा से जो कुछ हमने संसार में पूर्व जन्म में कुछ कर चुके हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उन पर सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरणागत हुई है। शरणागत अनन्या चिंतयन्तो माम, मतलब अनन्य भक्ति किसे कहते हैं, अनन्य भगवान की शरणागति के क्या अंग है, छे अनुकूल न संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, भगवान के अनुकूल जो हो प्रतिकूल नहीं हो, रक्षस्यति इति विश्वास हो, भगवान पूर्ण रक्षा करेंगे, और गोपत्रत्व वर्णन तथा उन्हें भगवान को वर्ण करना, जैसे स्त्रियां पति को वर्ण करती है तो मेरे सब कुछ प्रोटेक्टर मेंटेनर जो कुछ है वो भगवान है, इस तरह से वर्ण करना, और कार्पण्य आत्मनिक्षेप षडभिर, ये छह शरणागति। तो कार्पण्य का क्या मतलब है, कार्पण्य ने दीनता, दैन्यता या दीनता, दैन्यता या दीन बने ना, अपने आप को बहुत नीचा मानना, ये नहीं कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, यदि ऐसा हुआ तो हम आगे नहीं बढ़ सकते भक्ति में, एक तरह का घमंड हो गया। और आत्म अपना पूर्ण आत्मसमर्पण, तो ये छह शरणागति है, तो हमें शरणागति लेकर के आगे बढ़ना है। जैसे प्रहलाद महाराज ने पूर्ण भगवान पर समर्पित थे, पूर्ण तरह से भगवान मेरे, उन्हें कभी भी चिंता नहीं थी कि ये मुझे मेरा पिता या जो भी, उन्होंने अपने कई सैनिकों के थ्रू माल डालेगा, उन्हें कभी अपने शरीर की चिंता नहीं की और भगवान के चिंतन में लगे रहे। मतलब प्रहलाद महाराज का नाम नौदा भक्ति में किसके लिए आता है, किस बात के लिए वो फेमस है, स्मरण, भगवान के स्मरण हमेशा करते रहते थे। हरे कृष्णा। कोई को कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो या कुछ ऐड करना हो, कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। कोई प्रश्न नहीं, हाँ ओके ओके, हाँ थोड़ा
जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है दास दास अनु दास बनना है, तो ये जो आत्मा है हमारा, तो ये इसका स्वभाव है ऑटोमेटिक एक भाव होता है ये, कि एक तरीके से हम भगवान के दास हैं, तो ये आत्मा का नेचर है, और फिर हम सारे जीवात्माएं हैं उनके भी दास हैं, भगवान ही कह रहे हैं दास दास अनु दास बनना है, सबके दास बनना है, तो ये आत्मा का ये भी एक स्वभाव है कि एक तरीके का भाव होता है
ये। ये नहीं, इस भाव या स्वभाव, उसी भाव को आप स्वभाव यानी खुद का भाव, स्वभाव को मतलब अपना आत्मभाव, ये आत्मा का मतलब जीवन ये स्वरूप है ही है वास्तव में, पर हम ढक गए हैं। मतलब जो भाव, जैसे सोने का चमकीला भाव है, अग्नि का दाहक शक्ति है या लाइट देना है, पर वो ढक भी तो सकता है ना, राख से अग्नि ढक जाती है, चिंगारी ढक जाती है, जो पूरे संसार को जलाने की सामर्थ्य रखती है ढक जाती है। सोने को आप पृथ्वी में रख दें तो ऐसा लगता है कि कोई मिट्टी के ब्रिक होगी, मिट्टी है, पर उसे जब आप दर्पण मार्जन करेंगे तो उसमें अपना स्वाभाविक जो लश्चरपना है, सोना क्यों लोग पसंद करते हैं, उसके लश्चर से सोने का पसंद इसलिए है, ये नहीं कि उसमें बहुत सारे गुण है, उसका जो कलर है वो आकर्षित करता है, इसलिए उसके भाव ज्यादा है और कम मात्रा में लोग लेने वाले ज्यादा है।
जैसे उत्तम अधिकारी होता है तो वो अपने आप को सबसे नीचे मानता है कि मैं सबसे मूर्ख हूँ, बाकी सब लोग मुझसे ऊपर हैं, जबकि वो होता है महाभागवत की स्टेज में, तो वो उसका भाव है कि वो उस मतलब उसने रियलाइज कर लिया है, तो वो आत्मा का मतलब भगवान ने डिजाइन किया है, नेचर है कि मतलब उस एक तरीके का भाव है वो।
आपका प्रश्न उत्तम है, ये वास्तव में उसका भाव है, स्वभाव कोई बनता नहीं है। वो गुरु या जो बहुत बड़े वैष्णव हैं या भगवान भी जब ऐसा करते हैं कि मैं तो एकदम बालक हूँ, मैं माँ पर निर्भर हूँ, या तो वो भगवान है या बहुत बड़ा भक्त है, पर उसके हृदय में ऐसी दैन्यता ये सिर्फ प्रकट करने का नहीं है, वास्तविकता है वो। उस समय में योग माया या भक्त स्वयं भी हमेशा ही अपने आप को निम्न ही समझता है, ये उसका हृदय का भाव है। मतलब ये प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ एक मात्र बाहरी नहीं है, ये हृदय से है। हाँ, आत्मा के अंदर है, राइट। उसके आत्मा, ये आत्मा से ही वो करता है, अंदर से ही करता है, शो नहीं है, शोबाजी नहीं है। न भगवान के कोई एक्शन, न कोई भक्त के कोई एक्शन, ये जो दीनता है। पर कोई शो भी कर सकता है तो इससे तो दूर रहना पड़ेगा कि ये शोबाज है और ये वास्तविक है। एक बार थोड़ी मैं आपको छोटी कहानी सुनाता हूँ। सपेरा बतला रहा था शो अपना, और सपेरा जब बतला रहा था तो कई लोग मतलब बहुत खड़े हो गए। हरिदास ठाकुर भी उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने भी सांप को देखा, फंड करके नाच रहा था, तो उन्हें भाव आ गया कि ये भगवान का मतलब अनंत शेष है, तो नाचने लगे, भगवान का स्मरण करके नाचने लगे कि भगवान का एक्सपांशन है ये, नाचने लगे, कूदने लगे, कई लोग उन्हें ताली बजाने लगे, वाह वाह करने लगे, उनकी चरण लेने लगे कई लोग। तो ये जो इम्पोस्टर था उसने इसे देखा कि अरे यार ये भी नाचने लगा तो मैं भी ऐसा नाच सकता हूँ, तो वो भी कूदने लग गया। तो लोग आए और लाठी लेकर के उसको खूब पीटा, बेहोश कर दिया उसे, क्योंकि वो अंदर से नहीं था, वो बाहरी शो कर रहा था, पर हरदयास ठाकुर वास्तव में हृदय से उसे मान रहे थे कि अनंत शेष है। तो दोनों में डिफरेंस है, आप समझे ना। तो भगवान की कोई भी लीला ऐसी नहीं कि बाहर से शो कर रहे हो, या भक्तों की भी कोई भी जो रियल भक्त है वो शो नहीं करते, हृदय से। हृदय है ना आत्मा से समझ लो, हृदय है ना आत्मा के बहुत नजदीक है, हृदय आत्मा हृदय में ही निवास करती है। मतलब जो हृदय में है वही आत्मा मतलब बोल रही है, पर लोग मन के भावों को ही आत्मा के मान लेते हैं। तो कैसे पता लगाना कि ये मन का है या वास्तव में मतलब आत्मा से है? साधु, गुरु, शास्त्र, ये जब तीनों उसे प्रमाणित कर देते हैं तो मतलब है कि ये वास्तविकता है। तो तीनों को आप जाइए पूछिए, शास्त्र में दिया हुआ है क्या, साधु ने कोई इसने बताया है क्या, गुरु आपके क्या कहते हैं, तीनों का जब सामंजस्य हो तो उसे आप सही मान सकते हैं। हमारे यहाँ एक जीबीसी थे, उनका नाम याद नहीं, तो उन्होंने मुझे स्वप्न में आया कि ये प्रभुपाद की जो 14 मंजिल की बिल्डिंग है इसे बेच दो, तो उन्होंने बेच दिया। वास्तव में वो कोई युक्ति संगत नहीं था, उन्होंने कहा तो प्रभुपाद मेरे, तो प्रभु तो आदमी का अपना खुद का सोचना भी सपने में आ सकता है, प्रभुपाद ही आए इसकी क्या गारंटी है? उन्होंने किसी से और से पूछा नहीं। तो आप फिर कीजिए और उसको कंफर्म कीजिए कि शास्त्र में या किससे प्रभुपाद यदि होते स्वयं तो इसे इस चीज का अनुमोदन करते, इस चीज को चाहते या नहीं चाहते। प्रभुपाद उस प्रॉपर्टी को जो न्यूयॉर्क में 55th स्ट्रीट में थी, जहां मैं कई बार जा चुका था, वो कई बार इसका वर्णन करते थे कि मेरे पास मंदिर है, 14 मंजिल का है, मैनहट्टन में है, जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी ट्रेडिंग प्लेस या बड़ी जगह है जहाँ कई हाई राइज बिल्डिंग है, तो उसे खुश होते थे। और इन्होंने उनको बेच ही दिया और ये कहकर के प्रभुपाद ने सपने में कहा, क्योंकि उसे वो मैनेज नहीं कर पाते थे, मेंटेन नहीं कर पाते थे। तो ये कई इस तरह से बातें हैं जो हमें ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए और उसका कन्फर्मेशन साधु, शास्त्र, गुरु से लेना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आप
सेवा अपराध, जैसे अलग अलग अपराध है वो आपने बताया कि कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, सेवा अपराध जो होता है उससे कैसे समाधान होता है?
वो तो आप सेवा अपराध मत कीजिए, सेवा अपराध है ऐसा नहीं हाथ करके करते जाओ और उसे धोते जाओ। आप ये तो मत हाथी एलिफेंट जैसा हुआ कि आप गए स्नान किया फिर जैसे हाथी फिर धूल चपेट लेता है, तो सेवा अपराध तो साफ है कि आप अपराध कीजिए ही मत। यदि आप उसे अपराध मानते हैं तो उससे आप दूर रहिए, वो सेवा अपराध का वो है। जैसे जूते पहनकर नहीं जाना या जोर से नहीं बोलना या दो, तो ये तो सिंपल है कि आप उसे कीजिए मत, मतलब आपकी जानकारी के लिए मैं बोल रहा था, पर उसका कोई प्रायश्चित और कोई अलग से नहीं है। प्रायश्चित यही है कि आप उससे दूर रहिए, तो अपने आप प्रायश्चित हो गया। ओके ओके, और किसी को कोई ग्रंथ नहीं? तो माइक या थोड़ा पास आ जाइए, मुझे थोड़ा सुनने में तकलीफ है। नहीं नहीं, थोड़ा या तो ये माइक से मतलब।
आप बोले कि जो अपराध है, बार बार दूर से रहने के बाद भी बार बार फिर अपराध लागू हो जाते हैं, ऐसा क्यों होते हैं?
मतलब अपराध से दूर रहने पर भी बार बार वो प्रवृत्ति हो जाती है, आदत हो जाती है। आपका भगवान में प्रेम नहीं जन्मा, नाम में प्रेम नहीं है, गुरु वैष्णव में इतना यदि नहीं होगा, ये बार बार होने का कारण जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ न कुछ वैष्णव अपराध हो रहे हैं, और वो वैष्णव अपराध को जब तक आप पता नहीं लगाएंगे, अपने हृदय को टटोलेंगे नहीं, ये कोई बाहर का बताने की चीज नहीं है, बाहर वाला कोई आपको नहीं बता, आपको अपना हृदय को देखना पड़ेगा अंदर। रोज रात को सोते समय आप देखिए कि मेरे से कोई वैष्णव अपराध हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने किया नहीं किया, ये हमें अनुसंधान अपने आप का करना होगा। तो आप उससे नहीं तो बार बार ये चीजें होगी, आप उसे बुरा नहीं मानेंगे, ये ठीक है क्या हुआ उसमें, सब करते हैं ऐसा, सब करते हैं। तो ये भेड़ चाल हुई, एक भेड़ गई और क्लिफ से गिरी नीचे, यहाँ गई कूद करके मर गई, दूसरी सब भेड़े जाकर के मर जाती है, वो फॉलो करती है। तो आप भी अपने विचारों को ये मत समझिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही है, उसका सही है या नहीं है उसे शास्त्र से, साधु से, गुरु से पूछ करके उसका जवाब लीजिए। तो बार बार मन जाना इसीलिए है कि वैष्णव अपराध हो रहा है। ओके
हरे कृष्ण। और एक प्रश्न है।
हाँ बोलो।
हाँ जैसा हिरण्यकशिपु जो पिछले जन्म में था, जय विजय ना। हाँ अच्छा, इसका जो आप बोलेंगे अभी जो नवबदा भक्ति प्रहलाद महाराज के पास था, जो नवबदा भक्ति हिरण्यकशिपु के पास कौन सा भक्ति था जैसा कि भगवान ने इसे हाथ में मार लिया?
कौन सा भक्त था?
हाँ नहीं, कौन सा भक्ति था जैसा कि भगवान हाथ में मर गया, और कुछ तो बड़ा बड़ा पापी भी ऐसे पाप करते हैं लेकिन भगवान इसको नहीं मारते, क्षमा दे देते।
ऐसा है वो दोनों हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष या रावण और कुंभकर्ण, जरासंध और जरासंध नहीं, ये शिशुपाल और दंतवक्र, ये जय विजय है। पर भगवान की लीला में वो सहायता चाहते थे, भगवान की इच्छा थी कि ये राक्षस बन करके आए और उनके साथ में मेरी सिल्वरली या लड़ाई लड़ू मैं। वो अभक्त के साथ तो लड़ नहीं सकते, भगवान तो उसे टच भी नहीं करते। मतलब भगवान यहाँ आते भी हैं तो दूर से ही माया को देखते हैं और उसमें इम्प्रेगनेट कर देते हैं सब जीवों को। मतलब भगवान कांटेक्ट में माया के नहीं आते। तो भगवान के सब कार्य हैं, लड़ना भी जो है ये एक तरह का सिल्वर से एक एक्टिविटी है, जैसे कि पांच तरह का हमारा प्राथमिक भगवान से अपना आकर्षण है, दूसरे सात तरह से भी भगवान उनका जो हंसना, किसी से लड़ाई लड़ना, रौद्रतापना या विभत्सपना, तो ऐसे सात अलग अलग जो है जैसे कि साथ इनको, तो ये भगवान में लड़ाई लड़ने की इच्छा होती है। जैसे आप खाने में चटपटा भी होना, तीखा भी होना, मीठा भी होना, खट्टा भी होना, इस तरह से भगवान में भी ये प्रवृत्ति है। तो अब वो भगवान को लड़ाई लड़ना हो तो अपने भक्तों को इस लीला के द्वारा जय विजय को उन्होंने भेज दिया कि आप तीन जन्मों तक आप मेरे शत्रु बन करके रहिए। तो उनके हृदय में शत्रुता थी। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान की सेवा तो कर ही रहे हैं, पर वो लस्ट को, ये लस्ट नहीं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु लोभ, सोना चाहता है, सॉफ्ट बेड, कश्यपु यानी सॉफ्ट बेड और हिरण्य, हिरण्य मतलब सोना, तो वो गोल्ड चाहता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है लोभ को। रावण और कुंभकर्ण, रावण का क्या है, वो लस्टी था, मतलब पर स्त्री गमन उसका मेन था, सीता को चोरा करके ले आया। और ये कंस और शिशुपाल, मतलब शिशुपाल और दंतवक्र, ये भगवान के क्या थे, ये द्वेषी थे भगवान से। भगवान का गुणगान क्यों, उन्हें सबसे पहले राष्ट्रीय यज्ञ में क्यों बैठाया गया, तो इनमें भगवान के प्रति क्या था, ईर्ष्या थी, द्वेष भाव था, इसलिए भगवान को नीचा दिखाना चाहते थे। 100 गालियां दी जिससे कि हर गाली में एक बार में माल डालने के जितना पाप था, पर भगवान ने उसे माफ कर दिया। पर जब 100 से ज्यादा बढ़े तो भगवान ने चक्र से उसका सिर काट डाला शिशुपाल का। तो ये उनके मन में ये भाव थे, पर ये भाव योग माया के द्वारा दिए गए थे लड़ाई के। ये महामाया या माया जो वो दुर्गा देवी के द्वारा प्रेरित नहीं थे, इसलिए उनकी क्रियाएं वास्तव में वो ऐसा फील करते थे, लड़ते थे अपने आप, पर ये भगवान की सेवा के लिए था और वो योग माया ने उनमें इस तरह से भाव पैदा किए। ओके,
धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ओके, हरे कृष्ण। ग्रंथराज भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।